समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार और अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का। शाम के 4:30 बज चुके हैं और समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर, साथ ही करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन है। तो परिक्रमा के आज के संक में मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनुजा कुमार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून विशाल। Vishal, we are in the last week of December and surely a time of good winter days. Light snowfall in the higher reaches has also started. The winter chill in the northern region, uska maza uthaiye. Get set for all the fun time of winter. But yes, a request to please also donate winter clothing to people on the streets. Yes, they do need blankets, warm clothing and all. And of course, you can feel the joy of giving, which is a deep happiness and fulfillment felt from sharing resources with others, fostering connections, and also contributing to well-being, scientifically linked to the feel-good feeling within us. It's about selfless acts, from a smile to significant donations, bringing lasting joy that often surpasses the pleasure of receiving and builds a more compassionate world. Don't you think so, Vishal?
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुजा। जो जो देने में जो सुख, जो एक आंतरिक आत्मा को जो सुख मिलता है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। और जब आप सामने के वाले के चेहरे पे वो खुशी देखते हैं,
जी हाँ,
वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
Yes. And of course, as we are here with a fresh episode of Parikrama, let's update you all with the news-making headlines at this hour of the day.
चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मध्य प्रदेश के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया। केरल, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मसौदा सूची आज बाद में जारी की जाएगी।
First phase of hearings in West Bengal for unmapped voters to begin from Saturday to cover approximately 32 lakh people.
भारत चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को 45 करोड़ डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज प्रदान करेगा।
Vice President C.P. Radhakrishnan calls for making AI an integral part of curriculum in schools and colleges to equip students with problem-solving skills.
नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर कई संगठनों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया।
Dense fog disrupts flight and train operations in Delhi NCR region. Very dense fog likely to prevail in Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh.
और महिला क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला में आज शाम विशाखापट्टनम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला।
And Vishal, as every day, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about National Farmers Day. Welcome to all our listeners tuning in from villages, towns and cities across the country. And today's Dateline segment is a tribute to the hands that feed the nation. Today, the nation comes together to observe National Farmers Day, a day dedicated to honoring the tireless efforts, sacrifices and contributions of all the Indian farmers who remain the foundation of our economy and the soul of our civilization. Every grain of rice, every roti on our plate, every drop of milk carries a story of hard work, hope and resilience. It carries the story of India's farmer.
सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती,
मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती।
जी हाँ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, और अगर हम कहें तो जमीन से जुड़े नेता थे चौधरी चरण सिंह। वे केवल एक नीति निर्माता ही नहीं थे, सचमुच में धरती माँ के सच्चे सपूत थे। उनका मानना था कि जब तक किसान समृद्ध नहीं होंगे, भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। ग्रामीण चुनौतियों जैसे कि भूमि सुधार, उचित मूल्य और किसानों के सम्मान की उनकी गहरी समझ ने उन्हें उन लाखों लोगों की आवाज बना दिया जिनका जीवन कृषि पर निर्भर था।
Yes, even decades later, his ideas continue to guide India's agricultural policies and rural development vision. And on this occasion, Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan paid tributes to Chaudhary Charan Singh, remembering him as a visionary leader who dedicated his entire life to the upliftment of the farmers. The minister stated that Charan Singh's thoughts and principles remain relevant even today as India moves forward on the path of becoming a developed and self-reliant nation.
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी देश के अन्नदाताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने किसानों के अथक प्रयासों, दृढ़ता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि किसानों की मेहनत न केवल देश को भोजन प्रदान करती है बल्कि उसकी आत्मा को भी मजबूत करती है। उन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताया और कहा कि देश सदैव उनका ऋणी रहेगा।
And now let's talk about how the Indian farmer is the pillar of the economy. Friends, India's agricultural sector is vast and diverse. It employs nearly half of the country's population, making it one of the largest sources of livelihood in the nation. And from rain-fed farms to irrigated fields, from traditional practices to modern technology, Indian agriculture is constantly evolving. Farmers battle unpredictable monsoons, climate change, rising input costs, and market uncertainties, yet they continue to stand strong.
किसानों की मेहनत और उनकी दृढ़ता 1 अरब से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। राष्ट्र निर्माण में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए सरकार ने किसानों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और सतत कृषि विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पहलें शुरू की हैं।
Yes, and to name a few, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, which is also called PM Kisan, and this scheme provides direct income support to eligible farmers, helping them meet agricultural and household needs. We also talk about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, a crucial safety net. This scheme offers crop insurance to farmers against losses caused by natural calamities, pests and diseases. And of course, there is also Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana, which is designed to provide social security, and this pension scheme ensures financial support for farmers during their old age.
जी अनुजा, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं किसानों के कल्याण के लिए, और इन सभी योजनाओं का उद्देश्य खेती किसानी से जुड़े जोखिम को कम करना, किसानों की आय में सुधार करना और देश भर में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है। भारत आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है, और किसानों की देश की विकास गाथा में एक केंद्रीय भूमिका भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृषि तकनीक समाधान, उन्नत बीज, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकें धीरे धीरे भारतीय कृषि का चेहरा बदल रही हैं। किसानों को सशक्त बनाए बिना आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।
Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that an allocation of over 1,51,000 crore rupees has been proposed under the Viksit Bharat G Ramji scheme to ensure adequate funding for employment generation and comprehensive rural development. And in a video message, the minister said that the workers are now legally guaranteed 125 days of employment instead of 100 days. He said that a deliberate attempt is being made to mislead the nation once again in the name of MNREGA. He added that the scheme is a progressive step forward from MNREGA. The minister said the provision for unemployment allowance in case of non-availability of work has also been further strengthened. Mr. Singh highlighted that the scheme focuses on water conservation, rural infrastructure works, livelihood-based activities and disaster prevention measures to build a developed, self-reliant, poverty-free and employment-oriented villages.
आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर एक भारतीय होने के नाते किसानों का सम्मान करना, स्थानीय उत्पादों का समर्थन करना, अन्न की बर्बादी को कम करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है। किसानों के अथक परिश्रम और राष्ट्र की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान को हमारा नमन।
Yes, Vishal, and as today the nation celebrates the National Farmers Day, we remember not just a leader like Chaudhary Charan Singh, but the millions of farmers who continue to shape India's destiny. To every farmer listening today, your work feeds our present and secures our future.
Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Jawan, Jai Kisan, Jaag Utha Hai Hindustan, Jaag Utha Hai Hindustan, Jai Jawan, Jai Kisan.
और अब लिए चलते हैं आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि आज क्या है उनके पास विशेष। और सबसे पहले हम चल रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत की है। 17 दिसंबर से शुरू हुआ यह महत्वाकांक्षी अभियान 45 दिनों तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, समस्याओं का त्वरित निस्तारण और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। और इस अभियान से जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह।
उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर राशन कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाएं तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर जनता में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। अभियान के तहत पिछले 5 दिनों में राज्य के सभी जिलों में न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। अब तक 50 से अधिक शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 15,000 से अधिक लोगों की सहभागिता रही है। इन शिविरों में प्राप्त लगभग 4,000 शिकायतों में से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से विकास योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह अभियान सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंचेगी तो इससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा।
अगले न्यूनतम 45 दिन और 45 दिन से भी अधिक दिन तक राज्य के अंदर सेवा के अभियान के रूप में जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये अभियान हमारा विभिन्न न्याय पंचायतों में कैंप लगाकर जिसमें सभी हमारे आवश्यक विभागों के अधिकारीगण उन कैंपों में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी उन सब कैंपों की स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनपद के वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी समेत इनके नोडल अधिकारी होंगे जो लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चाहे वो केंद्र और राज्य की लाभप्रद योजनाएं हों, जन कल्याणकारी योजनाएं हों, होने वाले लाभार्थी हों, अनेक प्रकार के जो बनने वाले प्रमाण पत्र हों, इन सभी की समय पर निस्तारण करेंगे। इसके लिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वार ये कार्यक्रम चलाया गया है।
पौड़ी जिले के ग्रामीणों ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि अब छोटे छोटे कार्यों के लिए उन्हें तहसील या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार सीधे उनके गांव तक पहुंच रही है, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान संभव हो पा रहा है।
प्रशासन गांव की ओर अभियान में ग्राम सुखई में जो ये सभी अधिकारी और प्रतिनिधि कर्मचारी सभी यहाँ पर आए हैं, इनसे ये पशुपालन वालों की ओर से मुझे ये भैंस के दूध बनाने के लिए ये दवाई दी गई और उन्होंने पेट में जो कीड़े होते हैं वो उसके लिए भी दवाई दी है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ।
की सरकार जन जन के द्वारा कैंप लगाया गया सुकई में। यहाँ पे सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है।
आज मैं खुद भी खुश हूँ और पूरे गांव भी खुश है कि आज मतलब कैंप लगाए, हर किसी की समस्याओं का निवारण हो रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन की द्वार अभियान के तहत लोगों को योजनाओं की जानकारी, आवेदनों की स्थिति, स्वीकृति पत्र तथा प्रमाण पत्र घर के पास ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
एंड नाउ फ्रॉम उत्तराखंड वी टेक यू ऑल टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम हैज जॉइन द नेशन वाइड सेलिब्रेटेड इवेंट विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग ऑन द 19th ऑफ दिसंबर एट पालजोर स्टेडियम इन गैंगटॉक। आवर कॉरेस्पॉन्डेंट हैज ब्रॉट अस द डिटेल्स।
विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के अंतर्गत 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 का हिस्सा विकसित भारत राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 19 दिसंबर यानी शुक्रवार को गांगटॉक स्थित पालजोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खेल एवं युवा कार्य विभाग, सिक्किम सरकार के सहयोग से किया गया। सिक्किम राज्य खेल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रिंजिंग वांगेल चोपेल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में हाजिर रहा। माई भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के उप निर्देशक श्री मंगल झाकड़ ने आकाशवाणी समाचार गांगटॉक से विशेष बातचीत में बताया कि विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में सिक्किम के विभिन्न जिलों से लगभग 150 प्रतियोगियां इस कंपटीशन में भाग लिया। जाखड़ ने बताया कि कार्यक्रम के पारंपरिक भाग के अंतर्गत प्रतियोगियों ने समूह गीत, समूह नृत्य, कविता लेखन, निबंध प्रतियोगिता, पावर पॉइंट प्रस्तुति आदि में भाग लिया। वही प्रतियोगिता के तकनीकी भाग में प्रतियोगी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 10 विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन और मिशन के अनुरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में सिक्किम के युवाओं के विचार और सुझाव इस मंच पर आमंत्रित किए गए हैं। मंगल झाकड़ ने और भी बताया कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बाद चयनित विचार और प्रस्तुतियों राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में सिक्किम का प्रतिनिधित्व करेगा, जो 10 से 12 जनवरी 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। मैनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार गैंगटॉक से परिक्रमा के लिए।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी और भागम भाग वाली जिंदगी जो है अनुजा, उससे अब तंग आ रहे हैं लोग, धीरे धीरे फिर से प्रकृति की ओर लौट रहे हैं।
हाँ।
और एक वेलनेस आधारित जीवन शैली जो होती है उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है।
हाँ।
और इसी बदलते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने जा रहा है, जहां पर्यटकों को बेहतर स्वास्थ्य, शांति, प्राकृतिक वातावरण और आध्यात्मिक अनुभव सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने परियोजना के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शारदा बैराज को एक बिल्कुल नए एकोमोडेशन वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रमुख प्राकृतिक स्थलों को आधुनिक वेलनेस सुविधाओं से जोड़कर ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखीमपुर का शारदा बैराज अनोखे और बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से विकसित होने जा रहा है, जहां वेलनेस टूरिज्म की शांति और वाइल्ड लाइफ का रोमांच साथ मिलकर पर्यटकों को नया अनुभव देगा। घरेलू ही नहीं, विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आमद से ये क्षेत्र इनबाउंड टूरिज्म का उभरता हुआ नया हॉट स्पॉट बनेगा। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की योजना के तहत चयनित एजेंसी को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तथा यहां आवास एवं वेलनेस सेंटर का विकास किया जाएगा। चयनित एजेंसी सुविधाओं की योजना, डिजाइनिंग, निर्माण, वित्त पोषण और संचालन से संबंधित सभी कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक अवधि 15 वर्ष तय की गई है, जिसमें 15 वर्ष के अतिरिक्त विस्तार का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। शारदा बैराज में वेलनेस आधारित टूरिज्म का ये मॉडल उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल विकास और गुणवत्तायुक्त पर्यटन सुविधाओं की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। परिक्रमा के लिए शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का और जानते हैं वहाँ क्या हलचल है आज।
Yes, and we are all looking up to the women's cricket where India will take on Sri Lanka in second T20 of the five-match series in Vishakhapatnam today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The hosts have already taken 1-0 lead in the series. Indian team led by Captain Harmanpreet Kaur had defeated Sri Lanka by 8 wickets in the opening T20 match in Vishakhapatnam on Sunday. And now, in some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended on a mixed note in a choppy trade today. Both indices swung between gains and losses throughout the session and ultimately settled nearly unchanged. The Sensex dipped 43 points to close at 85,525, while the Nifty eked out a marginal gain of 5 points to settle at 26,177. And if we look into the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,38,500 rupees per 10 grams, and silver was trading also at 2,15,890 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब याद करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है, जयंती या फिर जन्मदिन।
We remember the valiant warrior of the War of Independence, Swami Shraddhanand, who died on 23rd of December 1926. An Arya Samaj sannyasi, he propagated the teachings of Dayananda Saraswati and worked for social reforms in the 1920s.
Swami Shraddhanand founded Gurukul on the 16th of May 1900 at Gujranwala, which was later moved to Haridwar.
During the national struggle for independence in the year 1919, he plunged into the agitation under the leadership of Gandhiji. He helped organize protests against the Rowlatt Act. When Gandhiji was arrested, Swami Shraddhanand led a protest march in Delhi, and when a soldier threatened to fire upon the crowd, he bared his chest and dared him to shoot. As a social worker, he always worked to improve the conditions of the poor and the downtrodden. In the words of Mahatma Gandhi, he lived a hero and died a hero.
We also remember freedom fighter and fifth Prime Minister of India, Chaudhary Charan Singh, who was born on the 23rd of December 1902 in Meerut, Uttar Pradesh. Charan Singh followed Mahatma Gandhi in non-violent struggle for independence and left his lucrative law career to join the freedom movement. From 1930 to 1947, he served several years in jail for participating in various struggles against the British government.
After independence, Charan Singh dedicated his life to the cause of farmers. He served as Chief Minister of Uttar Pradesh twice and was elected the fifth Prime Minister of India in 1979. We salute the great nationalist and leader of farmers.
We also remember freedom fighter P. Kakkan, who left us on the 23rd of December 1981. Fondly known as Kakkanji, he was born on the 18th of June 1908 in Tumbaipatti, Melur in Madras Presidency. Kakkan was drawn to the independence movement during his youth. In 1939, when the state government brought the Temple Entry Authorization and Indemnity Act, Kakkan led the temple entry of so-called lower castes at Madurai. He participated in the Quit India movement and was sent to Alipur jail. In 1946, he was elected to the Constituent Assembly.
After independence, Kakkan served as minister in the Tamil Nadu state government. We salute the great nationalist.
The 23rd of December is also the death anniversary of P.V. Narasimha Rao. Born on the 28th of June 1921, Narasimha Rao was active during the Indian independence movement. P.V. Narasimha Rao was part of Vande Mataram movement in the late 1930s in the Hyderabad state.
Narasimha Rao secured representation for depressed classes in politics during his tenure as Chief Minister of Andhra Pradesh. He served as the 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996.
He is credited to have laid the foundation of economic reforms and the reintegration of the Indian economy with the global economy in 1991.
Narasimha Rao was also an accomplished linguist. Rao's mother tongue was Telugu, but he also had an excellent command over 8 Indian languages and 8 foreign languages.
And moving on, we also pay tribute to Shyam Benegal, the leading Indian director of non-mainstream Hindi cinema and one of its most prolific filmmakers. The father of parallel cinema in India is widely considered to be Shyam Benegal, a visionary filmmaker known for realistic, socially relevant films like Ankur, Nishant and Manthan, which broke from Bollywood's song and dance formula to explore authentic Indian society and its struggles. He pioneered the new wave Indian cinema movement in the 70s and 80s, earning numerous accolades, including the Padma Bhushan and Dada Saheb Phalke Award. Another significant movie directed by him is Zubeda, which was awarded the National Film Award for Best Feature Film. And we have a song for you from that movie.
हिंदी सिनेमा में श्याम बेनेगल एक ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ दर्शकों को सोचने पर भी मजबूर किया। श्याम बेनेगल की फिल्में अपने राजनीतिक सामाजिक वक्तव्य के लिए जानी जाती हैं। उनकी फिल्मों में न शोर था न दिखावा, लेकिन हर कहानी के पीछे एक गहरी सोच थी।
Yes, Vishal, who can forget his movie Sardari Begum? We have a song from that movie as well.
मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होली में खेलूंगी डट के मोरे कान्हा जो आए पलट के अब के होली में खेलूंगी डट के
Of course, in later life, Benegal moved into politics, serving in the upper house of the parliament, and his creative endeavors took a parallel turn towards the statesman, like 1984 documentary on Nehru, a long-standing personal hero. Benegal added the biopic to Netaji Subhash Chandra Bose, the forgotten hero, on TV miniseries. And of course, he also made another series, Samvidhan, The Making of the Constitution, in 2014. But who can forget his movie Manthan, which was awarded another National Film Award for Best Film category, and also this song got the Best Song Award.
मैं तो देखूं तारी बाट दिन बीते नहीं रात कौन कहूं दिली बात मैं तो थाकी रे ना मैं गैया दुबा जाऊं ना मैं पानी भरवा जाऊं ना मैं सुख चैन पाऊं मारे घर अंगना ना भूलो ना
और आज ही के दिन जन्म हुआ था प्रसिद्ध उपन्यासकार कहानीकार निबंधकार नाटककार और एक बहुत बड़े साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी का इन्हें एक विचारक चिंतक क्रांतिकारी साहित्यकार पत्रकार और संपादक के रूप में भी जाना जाता है बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे हिंदी साहित्य की सेवा के साथ ही इन्होंने कई समाचार पत्र भी निकाले इसके अलावा कई राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में भी ये संलग्न रहे रामवृक्ष बेनीपुरी की आत्मा में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए और अपनी अधिकतर रचनाएं इन्होंने जेल प्रवास के दौरान ही लिखी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनमें उपन्यास जो हैं वो उनके नाम हम बताएं आपको तो पतितों के देश में और आम्रपाली प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा, माटी की मूर्तें और नाटक भी इन्होंने लिखे जिसमें प्रमुख नाटक रहे सीता का मन, संघमित्रा और अमर ज्योति।
विशाल, द टाइम इज टेकिंग अवे नाउ।
जी, और अब समय हो रहा है आपसे यही अनुमति लेने का, तो दीजिए अनुमति विशाल शर्मा और अनुजा कुमार को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं संपन्न करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।